जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सद ग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ, ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संसार बड़ा आपदा का समुद्र है, इसमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष है वह सत्संग और सत्शास्त्र के विचार से इस समुद्र को उल्लंघ जाता है और परमानंद निर्भय पद को, जो आदि अंत और मध्य से रहित है, प्राप्त होता है। और जो संसार समुद्र के सम्मुख हुआ है वह दुख से दुख को प्राप्त होता है और कष्ट से कष्टतर नरक को प्राप्त होता है। जैसे विष को विष जान उसका पान करता है और वह विष उसको नाश करता है, वैसे जो पुरुष संसार को असत्य जानकर फिर संसार की ओर यत्न करता है सो मृत्यु को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष आत्मपद से विमुख है पर उसे कल्याण रूप जानता है और उसके अभ्यास का त्याग कर संसार की ओर धावता है, वह वैसे ही नष्ट होगा और जन्म मरण को पावेगा जैसे किसी के घर में अग्नि लगे, वह तृण के घर और तृण ही के शैया में शयन करे तो वह नष्ट होगा। जो संसार के पदार्थों में सुख मानते हैं वे सुख बिजली की चमक से हैं, जो होके मिट जाते हैं, स्थिर नहीं रहते। संसार का दुख आगम पाई है। हे रामचंद्र जी, यह संसार अविचार से भासता है और विचार करने से लीन हो जाता है। यदि विचार करने से लीन न होता तो तुमको उपदेश करने का काम नहीं था। इसी कारण पुरुषार्थ चाहिए। जैसे हाथ में दीपक हो और अंधा होकर कूप में गिरे सो मूर्खता है, वैसे ही संसार भ्रम के निवारने वाले गुरु और शास्त्र विद्यमान है, जो उनकी शरण न आवे वह मूर्ख है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने संत के संगति और सच्छास्त्र के विचार द्वारा आत्मपद को पाया है सो पुरुष केवल कैवल्य भाव को प्राप्त हुआ है, अर्थात शुद्ध चैतन्य को प्राप्त हुआ है और संसार भ्रम उसका निवृत्त हो गया है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अंगनाओं के शरीरादिक भोग और जगत के पदार्थों में कुछ सुख नहीं। ज्ञानवानों को ये सब पदार्थ तुच्छ भासते हैं, वे इसमें आस्था नहीं करते तो फिर पदार्थ की इच्छा कैसे करें। इन भोग ऐश्वर्य पदार्थों से मूढ़ और असाधु संतोष पाते हैं, पर जो ज्ञानवान साधु है वे इनमें प्रीति नहीं करते। जो कृपण अज्ञानी है उनको भोग ही सरस है, पर भोग आदि अंत और मध्य में दुख रूप है। जो पुरुष इनमें आस्था करते हैं वे गर्दभ और नीच पशु हैं। हे रामचंद्र जी, स्त्री रक्त मांस और अस्थि आदि से पूर्ण है, जो इसको पाकर संतुष्ट होते हैं वे सियार है, मनुष्य नहीं है। जो ज्ञानवान है वे जगत के पदार्थों में प्रीति नहीं करते। पृथ्वी सर्व मृत्तिका, वृक्ष काष्ठ, देह मांस और पर्वत पाषाण रूप है, पाताल अधः है और आकाश ऊर्ध्व है, सो दिशाओं से व्यापा है, सर्व विश्व पंचभौतिक रूप है, इसमें जो अपूर्व सुख कोई नहीं जिसमें ज्ञानवान प्रीति करे। इंद्रियों के पंच विषय मोक्ष को हरने वाले और विवेक मार्ग को रोकने वाले हैं, और जो कुछ जगत जाल की संपूर्ण विभूति है वह सब दुख रूप है। प्रथम इनका प्रकाश भासता है पर पीछे कलंक को प्राप्त करते हैं। जैसे दीपक प्रथम प्रकाश को दिखाता है और फिर काजल कलंक को देता है, तैसे ही इंद्रियों के विषय आगम पाई है, इनसे शांति नहीं होती। अज्ञानी को स्त्री आदि पदार्थ रमणीय भासते हैं पर ज्ञानवान की वृत्ति इनकी ओर नहीं फुरती। अज्ञानी को यह स्थिर रूप भासते हैं, स्वाद देते हैं और तुष्ट करते हैं, पर ज्ञानवान को असत्य और चल रूप भासते हैं और तुष्टता के कारण नहीं होते। ये विषय भोग है, विष की नाई है और स्मरण मात्र से भी विश्वत मूर्छा करते हैं और सत्य विचार भूल जाता है। इससे तुम इनको त्याग करके अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ और ज्ञानवानों की नाई विचरो। हे रामचंद्र जी, जब इस जीव को अनात्म में आत्म अभिमान होता है तब असंग रूप जगत जाल भी सत्य हो भासता है। ब्रह्मा को भी वासना के वश से कल्प देह का संयोग होता है। जैसे स्वर्ण का प्रतिबिंब जल में पड़ता है और उसकी झलक कंधे पर पड़ती है पर कंधे से स्वर्ण का कुछ संयोग नहीं होता, तैसे ही ब्रह्म का संयोग देह से वास्तव कुछ नहीं, कल्पना मात्र देह है। राम जी ने पूछा, हे महामते, आत्मा विरंची पद को प्राप्त होकर फिर यह सघन रूप जगत कैसे रचते हैं, वह क्रम से कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब प्रथम ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं तब जैसे गर्भ से बालक उपजता है तैसे ही उपजकर बारंबार इस शब्द का उच्चारण किया कि ब्रह्म ब्रह्म, इस कारण उसको ब्रह्मा कहते हैं। फिर संकल्प जाल रूप और कल्पित आकार मन हो आया, उस मन ने संकल्प लक्ष्मी फैलाई। प्रथम संकल्प से माया उपजती है, फिर तेज अग्नि के चक्रवत फुरने लगा और उससे बड़ा आकार हो गया। फिर वह ज्वाला की नाई सुवर्ण लता रूप बड़ी जटा संयुक्त आकाश को धारे और शरीर मन संयुक्त सूर्य रूप होकर स्थित हुआ और अपने समान आकार बड़े प्रकाश से युक्त कल्पा और ज्वाला का मंडल आकाश के मध्य स्थित हुआ। अग्नि रूप और जिससे अग्नि ही अंग है, हे महाबुद्धिमान राम जी, इस प्रकार तो ब्रह्मा से सूर्य हुए हैं और दूसरी जो तेज किरणें फुरती है वे आकाश में तारांगण बिंब पर आरूढ़ फिरते हैं। फिर जो जो वह संकल्प करता गया त्यों त्यों तत्काल ही सिद्ध होकर भासने लगा। इसी प्रकार आगे जगत रचा। जिस प्रकार इस सृष्टि में ब्रह्मा रचता है उसी प्रकार और सृष्टि में रचते हैं। प्रथम प्रजापति, फिर काल कलना नक्षत्र और तारांगण, फिर देवता दैत्य मनुष्य नाग गंधर्व यक्ष नदियां समुद्र पर्वत सब इसी प्रकार कल्पे। और जैसे समुद्र में तरंग कल्पित होते हैं तैसे ही सिद्ध रच के उनके कर्म रचे। वे भी शुभ संकल्प रूप हैं, जैसा संकल्प करे वही सिद्ध होकर भासने लगे। इसी प्रकार फिर भूत और तारांगण उत्पन्न किए और उन्होंने और उत्पन्न किए। तब ब्रह्मा जी ने वेद उत्पन्न किया और जीवों के नाम आचार कर्म वृत्ति बनाए और जगत मर्यादा के लिए नीति रूप स्त्री को रचा। इसी प्रकार ब्रह्म की माया ब्रह्मरूप से बड़े शरीर धर रही है। आगे सृष्टि का विस्तार है, लोक और लोकपालों के क्रम किए हैं और सुमेरु और पृथ्वी के मध्य दशो दिशा रचकर सुख मृत्यु राग द्वेष प्रकट किए। इस प्रकार संपूर्ण जगत त्रिगुण रूप ब्रह्मा जी ने रचा और जैसे उसने रचा है तैसे ही स्थित है। यह जो कुछ संपूर्ण दृश्य भासता है वह सब माया मात्र है। इस प्रकार जगत का क्रम हुआ है। संकल्प रूप संसार बड़ा स्थित होकर अज्ञान से भासता है, यह संकल्प से रचा है। संकल्प के वश से जगत की क्रिया फैलाता है। संकल्प वश से दैव नीति होकर स्थित हुआ है और सब ब्रह्मा के संकल्प में स्थित है। जब उसका संकल्प निर्वाण होता है तब जगत भी लय हो जाता है। एक समय ब्रह्मा जी पद्मासन धर बैठे थे और विचारने लगे कि यह जगत जाल मन के संकल्प का फुरना मात्र है। मन के फुरने से उपजाता है और नाना प्रकार के विचार संयुक्त व्यवहार इंद्र उपेंद्र मनुष्य दैत्य समुद्र पर्वत पाताल पृथ्वी से लेकर सर्व जगत जाल माया मात्र और बड़ा फैल रहा है। इसलिए अब मैं इनसे निवृत्त हो। ऐसे विचार उन्होंने अनर्थ रूप संकल्प को दूर करके आदि अंतरहित अनादिमत परम ब्रह्माकार आत्मरूप आत्म तत्व में मन लगा लिया और आत्मरूप आत्मा होकर अपने आप में स्थित होकर निर्मल निरअहंकार परम तत्व को प्राप्त हुए हैं। जैसे कोई व्यवहार से थका हुआ विश्राम करता है तैसे ही वह अपने आप से आत्म तत्व में स्थित हुए। जैसे समुद्र अक्षोभ होता है तैसे ही वह अक्षोभ हुए और ध्यान में लगे और फिर जब ध्यान से जगे तो जैसे द्रवता से समुद्र से तरंग फुरावे तैसे ही चित्त के वश से ब्रह्मा जी फुरन रूप हो गए। तब जगत को देख के फिर चिंतन करने लगे कि संसार दुख सुख से संयुक्त अनंत फांसी से बंधायमान है और राग द्वेष भय मोह से दूषित है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जीवों को देख के ब्रह्मा जी को दया उपजी। तो अध्यात्म ज्ञान से संपन्न वेद विद और वेदांत प्रकट किए और बड़े अर्थ संयुक्त नाना प्रकार के शास्त्र रचे। फिर जीवों की मुक्ति के निमित्त पुराण रचे और परम पद जो आपदा से रहित है उसमें स्थित हुआ। जैसे मंदराचल पर्वत के निकले से क्षीर समुद्र शांत होता है तैसे ही शांत रूप होकर स्थित हुआ और फिर उसी प्रकार जाग के जगत को देख मर्यादा में लगाया। फिर कमल पीठ में स्थित होकर आत्म तत्व के ध्यान परायण हुआ। इसी प्रकार जो कुछ अपने शरीर की मर्यादा ब्रह्मा जी ने की है उसी प्रकार नीति के संस्कार पर्यंत क्रीड़ा करते हैं और कुलाल के चक्रवत नीति के अनुसार ही विचरते हैं। जैसे ताड़ना और वासना से रहित चक्र फिरता है तैसे ही वह जन्म मरण से रहित है। उसको शरीर के रखने और त्यागने की कुछ इच्छा नहीं और न कुछ जगत की स्थिति और न अनिस्थिति में इच्छा है। वह किसी पदार्थ के ग्रहण और त्याग की भावना में आसक्त नहीं होता और सब में समबुद्धि परिपूर्ण समुद्रवत स्थित है। कभी सब संकल्पों से रहित शांत रूप हो रहते हैं और कभी अपनी इच्छा से जगत रचते हैं, परंतु उनको जगत के रचने में कुछ भेद नहीं। सर्व पदार्थों की अवस्था में तुलना है। हे रामचंद्र जी, यह मैंने तुमसे ब्रह्मा जी की स्थिति कही है, यह परम दशा और भी किसी देवता को उपजे तो उसको समता जानिए, क्योंकि वह शुद्ध सात्विक रूप है। सृष्टि के आदि जो शुद्ध ब्रह्म तत्व में चित्त कला फुरी है, वही मन कला ब्रह्मरूप होकर स्थित हुई है। जब फिर जगत के स्थिति क्रम में कल्पना उत्पन्न होती है, तब वही ब्रह्मरूप आकाश पवन को आश्रय लेकर औषध और पत्रों में प्रवेश करती है। कहीं देवता भाव को, कहीं मनुष्य भाव को, कहीं पशु पक्षी तिर्यक आदि भाव में प्राप्त होती है और कहीं चंद्रमा की किरण द्वारा अन्न आदि औषध में प्राप्त होती है। जैसे भाव को लेकर चित्तकला फुरती है, तैसा ही भाव शीघ्र उत्पन्न हो आता है। कोई उपज कर संसार के संसर्गवश से उसी जन्म में बंधन से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने स्वरूप का चमत्कार होता है। कोई अनेक जन्म से मुक्त होते हैं और कोई थोड़े जन्म से मुक्त होते हैं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जगत का क्रम है। कोई प्रत्यक्ष संकट कर्म बंध मोक्ष रूप उपजते हैं और कोई मिट जाते हैं। इस प्रकार संसार बंध मोक्ष से पूर्ण है। जब यह कलनामल नष्ट होता है, तब संसार से मुक्त होता है, और जब तक कलनामल है तब तक यह संसार भासता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे महाबाहो रामचंद्र जी, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने निर्मल पद में स्थित होकर सर्ग फैलाया। संसार रूपी कूप में जीव भ्रमते हैं और जीव रूपी टीडी तृष्णा रूपी रस्सी से बंधे हुए कभी अध और कभी ऊर्ध्व को जाते हैं। जब वासना रूपी रस्सी टूट पड़ती है, तब ब्रह्म तत्व से उठे ब्रह्म तत्व में एकत्र हो जाते हैं। ब्रह्म सत्ता से जीव उपजते हैं और फिर ब्रह्म सत्ता में ही लय होते हैं। जैसे समुद्र में मेघ जलकण के धूम्र द्वारा उपजते हैं और फिर वर्षा से उसी में प्रवेश करते हैं, तैसे ही जब तन्मात्रा मंडल से चित्तकला निकलती है, तब उसी के साथ जीव एक रूप हो जाते हैं। जैसे मंदार वृक्ष के पुष्प की सुगंध वायु से मिलकर एक रूप हो जाती है, तैसे ही चित्त कला जीवत तन्मात्रा से मिलकर प्राण नाम पाती है। इस प्रकार प्राण वायु से आदि तन्मात्रा जीव कला को खींचने लगता है। जैसे बड़े प्रचंड दैत्य के समूह देवताओं को खींचे, तैसे ही खींचा हुआ जीव तन्मात्रा के एक रूप हो जाता है। जैसे गंध और वायु तन्मय होते हैं, तैसे ही वह प्राण तन्मात्रा जीव के शरीर में वीर्य स्थान में जाकर प्राप्त होता है और जगत में उपजकर प्राण प्रत्यक्ष होते हैं। कई धूम्र मार्ग से देहवान के शरीर में प्रवेश करते हैं, कई मेघ में प्रवेश कर बूंद मार्ग से औषध में रस रूप होकर स्थित होते हैं और उसको भोजन करने वाले के भीतर वीर्य रूप होकर स्थित होते हैं। कई और प्राणवायु प्रकट होते हैं और चर स्थावर रूप होते हैं। कई पवन मार्ग से धान के खेत में चावल रूप स्थित होते हैं और उनको जीव भोजन करते हैं तो वीर्य में प्राप्त होते हैं और नाना प्रकार के रंग भेद से प्राण धर्म उपजते हैं और कोई उपजने मात्र से जीव को परंपरा तन्मात्रा से वेष्टित जब तक चंद्रमा उदय नहीं हुआ आकाश में स्थित होते हैं और जब चंद्रमा उदय होता है तब उसका रस जो शीतल किरणों और श्वेत क्षीर समुद्र है उसमें जा प्राप्त होते हैं और उसके अंतर्गत होकर पात्र औषध में स्थित होते हैं। जैसे कमल पर भवरे आकर स्थित होते हैं तैसे ही औषध में जाकर जीव स्थित होते हैं और फल में स्वाद रूप होकर स्थित होते हैं। जैसे गन्ना रस से पूर्ण होता है तैसे ही जीव से औषध और फल पूर्ण हो जाते हैं। जैसे दूध से स्तन पूर्ण होते हैं तैसे ही जीव से फल पूर्ण होते हैं। जब वे फल परिपक्व होते हैं तो उनको देहधारी भक्षण करते हैं और उसमें जीव वीर्य और जड़ात्मक रूप होकर स्थित होते हैं। वह सुषुप्ति वासना से वेष्टित हुए गर्भ पिंजर में पड़ते हैं। हे रामचंद्र जी, जैसे मृत्तिका में घट आदि, काष्ठ में अग्नि और दूध में घृत सदा रहता है तैसे ही वीर्य में जीव रहता है। इस प्रकार परमात्मा महेश रूप से जीव की परंपरा उपजती है। वायु, धूम्र, औषध, प्राण, चंद्रमा की किरणें इत्यादि अनेक मार्ग से जीव उपजते हैं, जो उपजने से आत्मसत्ता से अप्रमादी रहते हैं और जिनको अपना स्वरूप विस्मरण नहीं होता वे शुद्ध सात्विकी है और महा उदार व्यवहारवान होते हैं और जिनको उपजना विस्मरण हो जाता है और फिर उसी शरीर में आत्मा का साक्षात्कार होता है वह सात्विक रूप है और जो उपजकर नाना प्रकार के व्यवहार करते हैं और जिनको स्वरूप विस्मरण हो जाता है जन्म की परंपरा पाकर स्वरूप का साक्षात्कार होता है वे राजस सात्विकी कहते हैं। जिनको अंत का जन्म आ रहा है उनको जिस प्रकार मोक्ष होता है वह क्रम अब तुमसे कहता हूं। हे रामचंद्र जी, उपजने मात्र से जो अप्रमादी हुए हैं वे शुद्ध सात्विकी है और वे ही ब्रह्मा आदिक है और जो प्रथम जन्म से बोधवान हुए हैं वे सात्विकी है और जो कभी किसी जन्म में मोक्ष हुए हैं वे राजसी सात्विकी है। इससे भिन्न नाना प्रकार के मूढ़, जड़ और तम संयुक्त स्थावर आदि अनेक है जिनको आत्मपद प्राप्त हुआ है उनको जो मिलते हैं उनका अंत जन्म है। ऐसे पुरुष विचारते हैं कि मैं कौन हूं और यह जगत क्या है और फिर इस विचार के क्रम से मोक्ष भागी होते हैं। वे राजस से सात्विकी होते हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो राजस से सात्विकी होते हैं वे पृथ्वी पर महागुणों से शोभायमान होते हैं और सदा उचित रूप रहते हैं। जैसे आकाश में चंद्रमा रहता है वे पुरुष खेद नहीं पाते हैं। जैसे आकाश को मलिनता नहीं स्पर्श करती तैसे ही उनको आपदा स्पर्श नहीं करती। जैसे रात्रि के आय से सुवर्ण के कमल नहीं मुंदते, जो कुछ प्रकृति आचार है उसके अनुसार चेष्टा करते हैं। और जैसे सूर्य अपने आचार में विचरता है और आचार नहीं करता, तैसे ही वे सत्य मार्ग में विचरते हैं और हृदय से पूर्ण शांत रूप है। जैसे चंद्रमा की कला क्षीण होती है तो भी वह अपनी शीतलता नहीं त्यागता, तैसे ज्ञानवान आपदा के प्राप्त हुए भी मलिनता को नहीं प्राप्त होते। वे सर्वदा काल मैत्री आदि गुणों से संपन्न रहते हैं और सदा उनसे शोभते हैं। समता रूप जो समरस है उससे वे पूर्ण और शांत रूप है और निरंतर शुद्ध समुद्रवत अपनी मर्यादा में स्थित रहते हैं। हे रामचंद्र जी, तुम भी महापुरुषों के मार्ग में सदा चलो और जो मार्ग परम पावन आपदा से रहित और सात्विकी है उसके अनुसार चलो, तब आपदा के समुद्र में तुम न डूबोगे।
हरि ओ हरि ओ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।